ज़ारा बाजी सलाम अर्ज़ करती हूँ, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ।
वालेकुम अस्सलाम, और नाज़रीन की ख़िदमत में भी मैं सलाम अर्ज़ करती हूँ। और बिल्कुल वो वाला मौजू पिछले हफ्ते तो असल में हज़रत मासूमा की वफ़ात या शहादत थी, तो उससे मुतालिक प्रोग्राम गया था। उससे पहले हमने इस मौजू को लिया था और तय ये हुआ था कि चूँकि मौजू बहुत अहम है और तकरीबन हर ख़ानदान के का ये मसला हो जाता हो रहा है और होता है, तो इस वजह से इस पर बात की जाएगी।
बिल्कुल, तो आज इस मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे।
हाँ बिल्कुल।
इससे पहले कि हम इस मौजू को आगे बढ़ाएं और कुछ नए सवाल आपकी खिदमत में मैं पेश करूं, मैं चाहूंगी छोटा सा एक फ्लैशबैक हम करें अपने पिछले से पिछले हफ्ते की गुफ्तगू का।
तो बात वहाँ पर हुई थी कि जैसे घर में बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको शुरू में तो ये था कि वह उनकी हुकूमत चलती थी, उसके बाद फिर ये हुआ कि वो हुकूमत से हट के फिर उनसे राय ली जाने लगी, और फिर एक स्टेज ये आई जब लोगों ने अपने आप को ज़्यादा मसरूफ़ दिखाया या हालात या ज़माना आगे बढ़ चुका है, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि हमें इनकी राय की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको बता दिया गया, मुत्तला किया जाने लगा। अच्छा, वो खामोश होते गए और उनमें एक तरह की अफसरदगी आती गई, उनमें अफसरदगी आती गई क्योंकि उन्होंने अपने आप को ये समझ लिया कि वो बेकार हैं और अब उनकी किसी को ज़रूरत नहीं है और उन्हें बस अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करने हैं, तो बस अब उनका काम यह है कि वो बैठ के मौत का इंतज़ार करें। ठीक है, कुछ घरों में जो बड़े शहरों में ये हुआ, जो तो मगरबी मुल्कों की तरह से उनको ओल्ड हाउसेज में भेज दिया गया और ऐसी जगहों पर मुख्तलिफ बहानों के साथ, बहाने हो सकता है बाज़ वक्त ये होते हैं कि मुवज्जा होते हैं, तौजीह होती है, दलील होती, लेकिन ये कि उससे बेहतर काम किया जा सकता है उनको ऐसी जगह भेजने के बजाय। बहरहाल तो ये कैफियत हो गई थी लोगों की, और उन हम लोग बात फिर ये करने के बाद कि हम बुज़ुर्गों से कैसे वो करें, उनके वजूद को पर और उनके एहतराम पर बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, तो हमें उनके वजूद से क्या फ़ायदा है, और हम उनके वजूद से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, हम इस पर बात कर रहे थे। तो वजूद का उनके पहला फ़ायदा तो ये होता है कि उनके तजुर्बात हम में मुंतकिल होते हैं। हम जाते हैं, हम जाके उनसे राय लेते हैं, हम ये कर रहे हैं, फ़लाँ जगह शादी करना चाह रहे हैं अपने बेटे की बेटी की, या फ़लाँ जगह ये मसला है इसको कैसे अंजाम दिया जाए, आप लोग अपने ज़माने में कैसे अंजाम देते थे। तो ये जो उसका नतीजा ये होता है कि जब वो हमें राय देते हैं तो वो अपने ज़माने की सादगी के मद्देनज़र राय देते हैं, तो हम इस मौजूदा ज़माने के शो ऑफ से बच जाते हैं। यानी अब तो मौत और शादी दोनों में ये जो दिखावा है वो इतना बढ़ चुका है कि उसने ज़िंदगी को अजाब कर दिया है, बिल्कुल लोगों की मुश्किलात में पता नहीं कितने गुने का इजाफा कर दिया। तो उनसे अगर हम राय लेते हैं तो वो हमको बताते हैं कि भई खाने में इतनी डिशें काफ़ी होंगी मिसाल के तौर पर, या ऐसा लिबास काफ़ी होगा, या हमारे ज़माने में या कहीं जाना है लेना देना है हमको, तो हमने पूछा भाई हम जा रहे हैं और हम वहाँ पर क्या दें तो मुनासिब रहेगा, तो उनका ये कहना होता था कि हमारा ज़माना था तो हम तो ये करते थे, तो आप उसमें थोड़ा सा अपने मुताबिक चेंज ले आए।
बिल्कुल,
तो हम उनके तजुर्बात से हर जगह लड़की लड़के के मामले में, शादियों के, मौत के, हर मामले में, अपने रोज़मर्रा के जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में हम उनसे राय ले सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि उनमें एक ये एहसास पैदा होता है कि हमारी ज़रूरत है, हमें अहमियत दी जा रही है, तो वो फिर हाथ पैर नहीं डालते, उनमें जितना भी दम है उसके मुताबिक वो काम करते हैं, उसके मुताबिक वो एक्टिव रहते हैं, वो ख़ानदान में शामिल रहते हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि जब हम उनका एहतराम कर रहे होते हैं तो हम एक तरह से अपने बच्चों को और अपनी आइंदा नस्लों को तरबियत दे रहे होते हैं, यानी हम अपने मुस्तकबिल को महफूज कर रहे होते हैं। जो हम आज उनके साथ कर रहे हैं वो कल हमारे बच्चे हमारे
पलट कर हमारे सामने आएगा।
तो ये चीज़ जो होती है ये बहुत अहम होती है कि यानी दो काम एक साथ है, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके वजूद से हम फ़ायदा उठा रहे हैं इस तरह का कि हमें चीज़ों की मालूमात हो रही। कभी हम बैठ गए, पुराने किस्से हमने पूछना शुरू किए, हमें अपने ख़ानदान के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में उनसे मालूम हो रहा है, हमें तारीख़ के बारे में उनसे मालूम हो रहा है, वो अपने ज़माने में जिस फील्ड की चीज़ थे उस फील्ड के बारे में हमें मालूमात हासिल हो रही। अगर हमारा ताल्लुक उसी फील्ड से तो हम आज के और हालात से उसको तकाबुल कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं कि क्या
इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली जमाने के मुताबिक ला सकते हैं।
बिल्कुल सही। तो एक तो ये फायदा, दूसरे ये कि हमारे बच्चों की तरबियत उस शक्ल में हो जाती है कि जो हमें पता भी नहीं चलता, और हमारे बच्चे जो हैं वो बेइंतहा ये कहते हैं कि फर्माबरदार, बहुत ही अच्छे, बहुत ही समझदार और दूसरों के लिए मुफीद तैयार होते हैं।
बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आजकल जो हम देखते हैं कि बच्चे जो है हर कोई अपने कमरे में अकेला अपने आपको बंद करके बैठता है, और इसकी बहुत बड़ी वजह यही हो सकती है
हाँ,
कि घर में बुजुर्ग मौजूद है नहीं,
हाँ,
बच्चों को पता ही नहीं है कि वो बड़ों से किस तरह से बात करें, या फिर जो मेहमान घर में आते हैं या बड़े जो भी आते
हाँ,
हैं किस तरह से उनसे पेश आए,
इनसे कैसे पेश आए।
बिल्कुल
तो इसकी वजह से वो जो तहजीब की कमी होती जा रही है, उन्स जो कम होता जा रहा है, उन्स जो कम हो रहा है, उसकी वह उसका भी बहुत ही ज़्यादा किरदार है आज के माशरे में, या आज के हालात को इस तरह पैदा करने में कि लोगों की हमदर्दियाँ एक दूसरे से कम होती जा रही हैं, क्योंकि बच्चों ने वो सीखा नहीं, उन्होंने देखा नहीं है।
बिल्कुल
उन्होंने अच्छा, जिन घरों में हैं बुज़ुर्ग उनमें बच्चे जो हैं वो उनसे ज़्यादा अपने वालदेन से ज़्यादा दादा दादी या नाना नानी से मानूस होते हैं, और उनको मोहब्बत उनसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि अब उन पर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन उन्हें शदीद मोहब्बत है। वो कहते हैं ना आम उसमें के सूद से, मूल से ज़्यादा सूद से मोहब्बत होती है, कि जब बैंक में पैसा रख दें तो कितना सूद आया वो देख के आदमी को ज़्यादा खुशी होती। तो उसे अपनी नस्ल के जारी रहने का जो मतलब वो देखते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये हमारी नस्ल जारी है, इसका सबूत है, ये चीज़ उन्हें बहुत खुशी देती है। और वो बच्चे भी ये देखते हैं कि कोई है जो हमसे इतनी शदीद मोहब्बत कर रहा है और हमारी ज़रूरियात का ख्याल रख रहा है, और हमें कई बार माँ बाप बेजा अगर गुस्से में डांट रहे हैं या जो भी, तो उनसे बचा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम होती। इस टॉपिक पे हमने बात यहाँ तक तकरीबन यहाँ तक की थी।
तकरीबन अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि हमने दुनियावी मसाइल पर, यानी दुनियावी अहमियत क्या है बुजुर्गों की, इस पर रोशनी डाली,
इस पर रोशनी डाली।
सही, तो अब चलते हैं इस तरफ की अहादीस की रोशनी में, हम देखना चाहेंगे कि बुजुर्गों की अहमियत, उनके मकाम के बारे में, ताकि देखने वालों के लिए और भी ये बात वाज़ेह हो जाए कि क्या कहा गया है।
देखिए बहुत अच्छा नुक्ता है ये, मज़हबी लिहाज से आप हदीसें उठा के देखें, आप आइम्मा के पैगंबरों के तालीमात आप देखें, तो उसमें हत्ता पड़ोसियों के लिए, पड़ोसी या आपका बिल्कुल अनजाना कोई शख्स है वो ज़ईफ़ है, तो उस तक के लिए आपका का फ़र्ज़ क्या बनता है, उस तक पर रोशनी डाली गई है। और यह है कि जिन जिस घर में कोई बूढ़ा होता है उस पर खुदा की ख़ास इनायत होती है, जिस घर में बूढ़ों का एहतराम किया जाता है उस घर में बरकतें ज़्यादा होती हैं। अगर तुम्हारे अपने घर में कोई बूढ़ा नहीं है तो पड़ोस के बूढ़े का एहतराम करो, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से, एक बूढ़े के वजूद से पूरे महल्ले पर खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं। यानी ये तक किया गया है कि आप जिस वक्त अहमियत देने पे आएँ तो सिर्फ ये नहीं कि आप अपने बूढ़े के लिए, बल्कि आप अपने पड़ोस में देखें किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। कोई बूढ़ा है तो उसका एहतराम आप पर फर्ज किया गया है, उसकी सिर्फ बालों की सफेदी की वजह से, उसने ये दुनिया देखी, और इस दुनिया में न जाने इसको बनाने में, जिस दुनिया में आप ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, इस दुनिया को बनाने में आपको तो नहीं मालूम उसका क्या हिस्सा रहा,
बिल्कुल क्या किरदार रहा है,
क्या किरदार रहा है उसका। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको मोहब्बत की नज़र से देखें, क्योंकि वो जवाबन जो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ ला सकती है और बहुत ज़्यादा बेहतरी पैदा कर सकती है।
बिल्कुल, और आजकल जो हम देखते हैं अफसोस के साथ कि मिसाल के तौर पर कोई बूढ़ा शख्स है, हाथ में सब्जियों की थैली लिए जा रहा है और हम बिल्कुल निगाह भी नहीं डालते उसकी तरफ, लेकिन काश के वापस ये सारी चीज़ें आ जाएं और हमारी गुफ्तगू इतनी असरअंदाज हो जाए कि नाज़रीन जो है इस बात को समझ सके। ये तो हो गई अहादीस की रोशनी में। ज़हरा जदी साहिबा, पूछना चाहूँगी आपसे यहाँ पर ये कि अक्सर हम देखते हैं कि जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, अब हम पहले भी इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं आपस में, कि थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है साथ साथ, बीमारी है, अब जैसन जो है इनकी उम्र जो है वो बढ़ चुकी है, या थकन है, जो भी आप कह सकें, तो उस वजह से वो चिड़चिड़ापन जो आता है हम नौजवान जो है उसको बर्दाश्त नहीं करते, और हम जो खुद जो है जवान साथ में उसी लहजे के साथ उसी चिड़चिड़ेपन के साथ जो है उनसे पेश आते हैं। तो
देखिए जो चिड़चिड़ापन वगैरह आता है वो जो मैंने अर्ज़ किया था कि जिस वक्त इंसान ये एहसास कर ले कि अब वो बेकार है, ठीक है ना, या ये कि वो फला चीज़ कर सकिए उसमें अंदर है कि ये फला काम हम कर सकते हैं लेकिन हमें लिया हमसे करवाया नहीं जा रहा है, हमें इसमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा है कि हम भी इसमें कुछ हिस्सा, यानी इनको हमारा काम पसंद नहीं है, तो एक जैसे कहते हैं कि पस्ती का एहसास होता है अपने लिए कि अब हम किसी लायक नहीं हैं, ये लोग हमारी अहमियत अब नहीं समझते। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन अंदर आता है, वो जो अफसुर्दगी पैदा होती है, वो बहुत जगहों पर उस चिड़चिड़ाहट का सबब
बनती है।
यानी इंसान बहुत नॉर्मल था अपनी पूरी ज़िंदगी, उसने अच्छे तरह से गुफ्तगू करके और अच्छे तरह माहौल में रह के और लोगों के साथ शफ़क़त करके गुजारी है, उसके बाद वो इस उम्र पे पहुंचा और अब वो देख रहा है कि वो इस घर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है, تو یہ چڑچڑاپن بہت جگہوں پر ہم خود دیتے ہیں,
بالکل
جوان نسل خود دیتی ہے ان کا احترام نہ کر کے, ان کو بالکل اگنور کر کے, ان کو بالکل ان کی طرف سے بے اتنائی برت کے,
بالکل گھر میں ایک صوفے کی طرح سمجھ کے ان کو,
بالکل جن گھروں میں اہمیت بھی دی جاتی ہے. اب جیسے کوئی شخص ہے وہ عام حالات میں بہت اچھا آدمی تھا, بیمار ہے, تو وہ جو بیماری کی افسردگی ہے وہ بھی اس میں چڑچڑا پن لاتی ہے. اپنے بدن کی کمزوری کا یہ احساس جو ہے کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو یہ کیا کرتے تھے, وہ فکر اس کو چڑچڑا بناتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گھروں میں کچھ لوگوں کی, ہم لوگوں کے سماج میں یہ بات ہوتا ہے کہ بیٹا تو جائے گا آفس, تو اب جو بہو لایا ہے اس کی ذمہ داری ہے گھر کے بوڑھے, جو بھی ساس سسر جو بھی ہیں بوڑھے, ان کو دیکھنا. یہ چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی چڑچڑاہٹ اور پیدا ہوتی ہے دونوں طرف. جو بہو ہے اس گھر کی وہ یہ سوچتی کہ بھائی میں بھی تو انسان ہوں, اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو آفس چلے گئے, بھائی آفس کے علاوہ بھی تو وقت ملتا ہے نا, آپ کبھی رات کو کبھی صبح کو ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, جو بھی آپ کے گھر کا بوڑھا ہے اس سے بات کریں, اس کی ضروریات پوچھیں, اور جس وقت بیوی یا گھر کی جو بھی خاتون ہے وہ کام کر رہی ہے آپ اس کا ہاتھ بٹائیں. ان بوڑھوں کو جو وہاں کے اوپر موجود ہیں ان کے سلسلے کے جو کام ہیں وہ اگر گھر والے آپس میں تقسیم کر لیں تو یہ تقسیم اس بات کا سبب بنے گی کہ کسی پر بھی بوجھ نہیں پڑے گا, کسی پر بوجھ نہیں پڑے گا. اور مثال کے طور پر اس کے پانچ کام ہیں تو, اور گھر میں چار پانچ لوگ ہیں,
صحیح,
تو اگر ہر آدمی اپنے اپنے کام کے لیے ایک بار اس کے پاس جائے گا تو اس میں جو یہ جذبہ ہوگا کہ ہم اب کسی لائق نہیں ہیں, ہمیں کونے میں بس پڑے رہیں, وہ جذبہ نہیں رہے گا. پانچ لوگ اس کے پاس آئے
اور اس کی طبیعت پوچھی,
اس کی طبیعت کام کی انجام دیا, تو وہ جو افسردگی والی کیفیت ہے وہ اس میں دور ہو جائے گی, دور ہو جائے گی, تو یہ چڑچڑاہٹ کم ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. اور کسی پر چونکہ ایک آدمی پر اس کا پریشر, اس کا دباؤ نہیں پڑے گا کام کا, تو وہ جو کام کرنے والا شخص ہے اس میں بھی وہ چڑچڑاہٹ پیدا
نہیں ہوگی. بے شک ٹیکنالوجی کو اس لیے جو ہے ہم نے بنایا کہ جو ہے اس دنیا کو ہم گلوبل ولیج کہہ سکیں اور جو ہے ہمارے رابطے اور بھی نزدیک ہو جائیں, لیکن یقین مانیے ٹیکنالوجی نے جو ہے ایک دل سے دوسرے دل کے رستے کو, تقریباً ایک سیارے سے دوسرے سیارے کا رستہ بنا دیا ہے. ہماری محترم مہمان یہاں پر تشریف رکھتی ہے محترمہ زہرا زیدی, اور ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین نے کچھ یہاں پر جو ہے اپنی رائے دی تھی, ایک نے کہا کہ ٹیکنالوجیز کی وجہ ہے کہ بڑے اور بزرگوں کا احترام ختم ہو گیا یا ان کا مقام اس طرح سے باقی نہیں رہا, کسی نے کہا جوائنٹ فیملی سسٹم, اور کسی نے کہا کہ حالات اور مشکلات ہی کچھ ایسے ہیں تو ہم کیا کریں.
دیکھیے جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوا اور ہے اس کی, میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس میں بزرگوں کا جو مقام تھا وہ تھوڑا سا کھسک گیا اپنے جہاں پر ہونا چاہیے تھا اس سے. لیکن ہم یعنی میں یا آپ لوگ ابھی بات کر رہے تھے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ٹیکنالوجی بھی بیچاری گنہگار نہیں ہے, اور یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اپنے بھی مسائل ہوا کرتے تھے, مثال پر حجاب کا مسئلہ, یہ جو ہم لوگوں نے جو جوائنٹ فیملی سسٹم رکھا تھا وہ بھی اصل اسلامی جوائنٹ فیملی سسٹم سے الگ تھا. اس جوائنٹ فیملی سسٹم جو اسلام میں ہے وہ یہ تھا کہ لوگ نزدیک رہتے تھے, لیکن ہر ایک کا, مثال کے طور پر گھر ہے, گھر ملے ہوئے ہیں, ان کا آپس میں کنیکشن بھی ہے, لیکن ہر ایک کا صحن الگ ہے, ہر ایک کے حصے الگ ہیں. یعنی جسے کہتے ہیں آپ دروازے کھول دیں تو سب ایک ہیں, اور دروازے بند کر دیں تو الگ ہیں, یا برابر میں بھی گھر ہے. پکار کے آنا, کھٹکھٹا کے آنا, تاکہ جو خاتون جس لباس میں ہے, جس اس میں ہے, اس کو اس کے مطابق کہ محرم آ رہا ہے کہ نامحرم آ رہا ہے, اس کے لحاظ سے سمیٹ لے. تو ہمارے یہاں جو فیملی سسٹم, یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم رکھا گیا, اس میں یہ ہوا کہ بھئی یہ تو فلاں کا لڑکا ہے تو ہمارے شوہر کے بھائی کا بیٹا ہے تو اس سے پردہ کیسے ہو سکتا ہے, فلاں تو یوں ہے. اس نے اسلامی تعلیمات کو نقصان پہنچایا, اور ہم نے اسلامی تعلیمات کو اس شکل میں اپنے سے دور کیا کہ جس کی وجہ سے یہ ساری مشکلات پیدا ہوئیں, کہ ہم سے بار بار آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث دیکھیں یا ائمہ طاہرین کی دیکھیں, بزرگان دین کی دیکھیں, سب نے کہا ہے کہ آپ اپنے وقت کو تین چار حصوں میں تقسیم کریں.
صحیح.
کچھ حصہ عبادت کے لیے ہو, کچھ حصہ آپ کا جو ہے وہ کام کے لیے, روزمرہ کے کام کے لیے, یعنی زندگی چلانے کے لیے, جو آپ جاب کر رہی ہیں, آپ بزنس کر رہی ہیں, جو بھی کر رہی ہیں, یا تعلیم حاصل کر رہی ہیں, کچھ حصہ جو ہے وہ آپ لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے رکھیں, اور اسی طرح سے مطلب وہ مختلف حصوں کو بانٹا گیا ہے کہ آرام کے لیے اپنا کون سا حصہ رکھیں جس میں آپ خود اپنی رسیدگی کریں. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے جو حصہ بھی آپ اسی طرح سے بانٹ لیں, آپ نے عبادت کی, آپ کو ایک گھنٹہ عبادت کے لیے مثال کے طور پر یا قرآن پڑھا, نماز پڑھی, کچھ دوسری اس طرح سے متعلق کتابیں پڑھی, اس کے لیے آپ نے رکھا آدھا گھنٹہ, رکھا ایک گھنٹہ, رکھا آپ نے عبادت کے لیے, جو عبادت کا مطلب ہی 15 منٹ, ابھی 15 منٹ مختلف نمازوں کی, جو بھی آپ نے وقت رکھا, ایک خاص وقت رکھ لیا, پھر آپ نے کھانے پینے اور اپنے پہننے اوڑھنے اور اس سب کے لیے خاص مقرر کیا, اسی طرح ایک خاص وقت آپ ٹیکنالوجی کے لیے مقرر کر لیں.
بالکل,
آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے, دوستوں سے آپ کو اپنا بالکل رابطہ رکھنا ہے, وہ رکھنا ہے, بالکل رکھیں, لیکن اس کی ایک حد رکھیں.
بالکل,
یہ جو چیز آپ کو سائنٹیفک لحاظ سے میڈیکلی جسے کہتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے, وہ چیز یہی ہے کہ کمپیوٹر پہ بیٹھے تو پھر بیٹھ گئے.
بالکل,
تو ہم نے چونکہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے, ورنہ اسلامی تعلیمات ہر زمانے کے لیے ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں اور ہر مناسبت کے ساتھ
اور ہر زمانے میں فٹ بیٹھتی ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری رہے گی معزز ناظرین, فی الحال وقت ہوا ہے ہم چلیں گے حسن زیدی کی خدمت میں. جی حسن,
شکریہ. یہاں پہ احمد رمیز صاحب پرتاپ سوم ونشی کی ایک کلام ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کئی خزانے قصے والے ایک بچے کے پاس ملے, دادا دادی اس کے پاس, نانا نانی اس کے پاس. یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو جوائنٹ فیملی کے ساتھ مربوط ہیں. ایک چیز بتانا وہاں پہ, یعنی وہ جو ہم نے اس فیملی کے بارے میں بتایا تھا جو امریکہ میں تھی, ان میں یہ تھا کہ 2 مہینے کے بعد, 60 دن کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم روزانہ جو ہے 30 منٹ جو ہے ہر یعنی شخص کو اجازت ہوگی موبائل فون, ٹیبلٹ یا یعنی یہ ورچوئل دنیا کو استعمال کرنے کی. اپنے گھرانوں کو مضبوط رکھنے کے مختلف طریقے ہیں, اور یقیناً اگر ہمیں بنیاد مستحکم بنانی ہے کہ یہ گھر مستحکم رہے, اور یہ کہ ہمارے بچے پھر ہمارے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں جیسے یعنی ہم نے اگر اچھا سلوک کیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ تو ہمارے بچے بھی وہی کریں, تو ہم لوگوں کو یہ تمام یہ جو قاعدے ہیں اس کے ان پر عمل کرنا ہوگا. اور یہ کہ احترام کے ذریعے ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. اور ایک فرق جو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں اچھا خاندان ہے فلاں جگہ شادی کی جائے اور فلاں برا خاندان ہے وہاں پہ شادی نہیں کی جائے, وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بنیادوں کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا ہے. چلتے ہیں رباب منصوری کی طرف.
بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا, اور جی بہت ہی اچھی طرح اشارہ کیا حسن بھائی نے, اور میں بھی اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح جیسا میں اپنی بیٹی کے ساتھ جو سلوک کروں گی یا میری بیٹی, یہ کوئی چیز گھوم کے سامنے میری بھی آئے گی اور اس کے سامنے بھی آئے گی. تو یہ بڑھاپا جو ہے وہ سب کے لیے ہے, میرے لیے بھی ہے, ہم سب کے لیے ہے جو یہاں بیٹھے ہیں. تو میں آج جو ہے مثال کے طور پر وہ چڑچڑا پن کر رہی ہوں اپنے بڑے بزرگوں سے, اب وہ کسی بھی وجہ سے, اب کوئی بیماری ہے, پریشانی ہے, لیکن مجھ میں برداشت نہیں ہے, میں صبر و تحمل کے ساتھ کام نہیں لے سکتی ہوں, اور میں نے پلٹ کے آ کے سے جواب دے دیا یا میں نہیں کر رہی ہوں, پھر بدتمیزی سے میں نے بات کی خدا نخواستہ. تو ہم کس طرح سے اپنے رفتار کو ٹھیک کریں؟
ایک طریقہ تو ایک چیز جو بنیادی طور پہ جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی ایک کے ذمے کسی بوڑھے یا کسی مریض کو نہیں چھوڑنا چاہیے, بیمار شخص کو یا بوڑھے شخص کو, کسی ایک کی ذمہ داری بن جائے اور بس وہی کرے, تو اس کو دوسرے بھی بہت سارے کام ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ایک تو یہ ہے کہ کام تقسیم ہونا چاہیے لوگوں میں, سب میں, میاں اور بیوی اور بچوں اور سب کے جو لوگ بھی ہیں گھر میں موجود ان کے درمیان. دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہر شخص کو خدا کو نظر میں رکھنا چاہیے, اپنے کاموں کو وہی کہ ہم اپنے کاموں کو اگر بانٹ لیں کہ مثلا عبادت کا یہ حصہ تھا ہم نے کر لیا, بوڑھوں کی خدمت کو جیسے آپ ریڈیو ٹیلی ویژن پروگرام ہوتے ہیں نا بیچ بیچ میں وہ ایڈورٹیزمنٹس آتے ہیں, اب بیچ میں تو آپ ان کو وہ ایڈورٹیزمنٹ کی جگہ جو ہے وہ آپ ان کی خدمت کا حصہ رکھ لیں. مطلب آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے نماز جو بھی اپنا ٹائم اس بیچ میں ہو سکتا ہے, اس بیچ میں بھی ضرورت پڑ جائے آپ اٹھ کے 2 منٹ کے لیے ان کے پاس چلے جائیں, ان سے چیزیں پوچھ لیں, ان سے بات کر لیں. اسی طرح دوسرے کاموں کے درمیان ان سے جا کے رائے لے لی, ان سے بات کر لی, اگر ان کو تکلیف ہے وہ چیز کو دور کر دیا. ایک شخص نہ کرے, اور اپنے کام کے بیچ بیچ میں جا کے اگر آپ ان کی خبر لیتے رہیں تو آپ میں چڑچڑاہٹ نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. اور سب سے بڑی چیز جو اس میں مددگار ثابت ہوتی ہے وہ انسان کا عقیدہ ہوتا ہے. اگر اپنے عقیدے کو اتنا پختہ کر لیں کہ آپ اس خدمت کو خدا کی مرضی اور خدا کی خوشنودی کا حصہ سمجھ لیں, تو پھر وہ کام آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. مشکل ہوتی ہے, تھکن ہوتی ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ جیسے آپ نے بہت زیادہ امتحان کے لیے پڑھا, ٹھیک ہے نا, تھکن آپ کو ہوئی, مشکل آپ کو ہوئی, آپ رات کو بھی جاگیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ رزلٹ اس سے ہمارا بہت اچھا ہونے والا. तो जब रिजल्ट जहन में हो, जब ये हो कि इस ये किताब पढ़ने से हमें ये नॉलेज मिल रही है, इसका ये नतीजा निकलेगा, तो वही चीज़ खुदा के सिलसिले में कि अगर खुदा की आप मर्जी को नज़र में रख लें और जो नतीजा निकलने वाला है उसको रख लें, तो आपको थकन नहीं और चिड़चिड़ाहट नहीं
होगी। नहीं होगी, बिल्कुल। पूछना चाहूँगी कि खुद बुजुर्गों का रफ्तार किस तरह से होना चाहिए कि नौजवान भी जो है
देखें, बुजुर्गों की रफ्तार का ये होता है कि कुछ अमराज या कुछ हालात ऐसे होते हैं कि उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी मरीज को एल्जाइमर है, उसके आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको सिर्फ बर्दाश्त करना है वही कि खुदा को मद्देनजर रखें। और कुछ ये होता है कि वो ठीक है लेकिन मिजाजन चिड़चिड़े हैं, वो शुरू से चिड़चिड़े रहे, वो शुरू से गुस्वर रहे। उनका एक तरीका तो ये होता है कि कोई ऐसा आदमी जिस पे उन्हें भरोसा हो वो तन्हाई में बैठ के उनसे इस मौजू बात करे कि आप अपनी तवक्कोआत कम करें, आप इतना न उम्मीद रखें कि हर आदमी हर चीज़ आपकी हर वक्त करे, और इसी तरह आपकी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं, इस किस्म की बातें करके उनके उनको पॉजिटिव चीज़ें उनकी ज़िंदगी में जो हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाएं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ एक ये जो मैं कहना चाहूँगी, जैसे मैं हूँ अभी, आप लोग तो बच्चे हैं उस लिहाज से, कि अपने आप को अभी से बल्कि जवानी के ज़माने से इंसान कंट्रोल करे और वो इस तरह के लोगों से तवक्को कम से कम या न रखे तवक्को किसी से, एक। और दूसरी चीज़ ये कि अपने मिजाज को जहाँ पे गुस्सा आए गुस्से को काबू करना सीखें, क्योंकि अगर जवानी में काबू नहीं किया तो उम्र के साथ साथ वो कैफियत बढ़ती जाती है और बढ़ने के बाद वो बूढ़ा जो वो शख्स है वो अजाब बन जाता है दूसरों के लिए जो घर में मौजूद होते हैं। तो फिर उस वक्त उनका, जैसे कहते हैं कि जवानों का या घर के दूसरे अफराद का सही मानों में इम्तिहान होता है, ये और बात है कि खुदा उसका आज बहुत ज़्यादा रखता है, लेकिन खुद इस बूढ़े शख्स की ज़िंदगी भी बहुत अजीरन हो जाती है और दूसरे लोगों की भी बहुत। तो हमें शुरू से अपने आप को ये ट्रेन करना चाहिए कि हमें बर्दाश्त का मादा ज़्यादा हो, दूसरों से हम तवक्को ना रखें और अपने गुस्से पर काबू करें। अपने जिसे बाज लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं तो फिर उस खुशी में भी वो कुछ नहीं देखते, तो इन सारी ऐसी कैफियत पर अपने हम शुरू से अगर जवानी से कंट्रोल करेंगे तो बुढ़ापा हमारा ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी, आज प्रोग्राम में इन्होंने हमारा साथ दिया और हमेशा की तरह अहम नुकात की तरफ इशारा किया और हमें याद दिलाया कि हमें किस तरह से रफ्तार करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए अपने मुस्तकबिल के लिए।